एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में झांक रहे हैं जिन्हें अक्सर पश्चिमी बौद्धिक परंपरा का शायद आखिरी यूनिवर्सल जीनियस कहा जाता है।
हाँ, गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज।
बिल्कुल, 1646 में जन्म, 1716 में मृत्यु, पवित्र रोमन साम्राज्य यानी आज का जर्मनी। जरा सोचिए, एक ही शख्स गणित, खासकर कैलकुलस, फिर दर्शन, विज्ञान, कानून, इतिहास, यहाँ तक कि कूटनीति, सब में कुछ नया, कुछ बुनियादी काम कर रहा हो।
सच में कमाल की प्रतिभा थी।
तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस बहुआयामी विचारक को थोड़ा समझें, और ये भी कि भाई इतने साल बाद भी इनके विचार आज क्यों मायने रखते हैं।
बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है कि लाइबनिस किस दौर में जी रहे थे। वो एक असाधारण उथल पुथल का समय था,
वैज्ञानिक क्रांति और प्रबोधन काल की शुरुआत।
हाँ बिल्कुल, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और अर्ली एनलाइटनमेंट, विचारों का एक तरह से विस्फोट हो रहा था यूरोप में। और लाइबनिस जो थे वो तर्कवाद यानी रैशनलिज्म के सबसे बड़े नामों में से एक थे।
रैशनलिज्म यानी ये मानना कि ज्ञान का असली स्रोत तर्क बुद्धि है।
हाँ, अनुभव से ज्यादा तर्क पर जोर, और उनकी पूरी सोच पर इस दौर की छाप दिखती है। मतलब हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना, गणित जैसी सटीकता लाना, और एक बड़ी चुनौती थी उस वक्त आस्था और तर्क में तालमेल बिठाना।
हाँ, वो माहौल ही गजब का रहा होगा। यूरोप में 30 साल लंबा युद्ध अभी खत्म हुआ था।
बिल्कुल, और गैलीलियो, डेस्कार्टेज, न्यूटन जैसे लोग विज्ञान की पूरी तस्वीर बदल रहे थे, पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं।
और लाइबनिज इसी सब के बीचों बीच थे।
एकदम, और वो अकेले नहीं थे। उनके जमाने के जो बड़े विचारक थे उनसे उनका लगातार संवाद रहता था, कभी कभी टकराव भी।
जैसे न्यूटन के साथ कैलकुलस वाला किस्सा।
हाँ, वो तो सबसे मशहूर है। कैलकुलस का आविष्कार किसने पहले किया, इसे लेकर जबरदस्त बहस चली, बहुत कड़वाहट भी रही।
और डिस्कार्टेज़म, उनसे भी कुछ था।
हाँ, डेकार्टेस से वो प्रभावित भी थे, लेकिन उनकी आलोचना भी करते थे, खासकर जो डेकार्टेस का मन और शरीर को अलग अलग मानने वाला सिद्धांत था, ड्यूअलिज्म जिसे कहते हैं। लाइबनिज ने उसे चुनौती दी, अपना एक अलग ही समाधान दिया।
तो इन सब बड़े नामों के बीच उन्होंने अपनी जगह कैसे बनाई? सुना है उनकी शुरुआत की कहानी बड़ी दिलचस्प है।
बहुत ज्यादा। लाइप्ज़िग में जन्म हुआ, पिता प्रोफेसर थे नैतिक दर्शन के, लेकिन जब लाइबनिज सिर्फ 6 साल के थे पिता गुजर गए।
ओह, ये तो दुख की बात है।
हाँ, लेकिन एक तरह से यहीं से उनकी असाधारण यात्रा शुरू हुई। पिता की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और वो पूरी लाइब्रेरी नन्हे लाइबनिज के हाथ लग गई।
वाह, ये तो खजाना मिल गया।
बिल्कुल, और उस जमाने में किताबें कितनी बड़ी चीज होती थीं। तो बस वो लग गए। कहते हैं 12 साल की उम्र तक खुद ही लैटिन और ग्रीक सीख ली।
क्या बात है।
खुद से, हाँ, और 14-15 साल में यूनिवर्सिटी पहुंच गए। 20 की उम्र तक कानून में डॉक्टरेट के लिए तैयार थे।
20 साल में डॉक्टरेट।
हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच आया। लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप अभी बहुत छोटे हैं, डॉक्टरेट नहीं दे सकते।
अरे, ये क्या बात हुई?
बस इस बात पर लाइबनिस इतने नाराज हुए कि उन्होंने लाइप्ज़िग हमेशा के लिए छोड़ दिया।
अच्छा, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था उनके जीवन का।
बिल्कुल, इसके बाद वो पेरिस गए, करीब 1672 से 76 तक वहां रहे, और वो साल उनके लिए बहुत अहम साबित हुए। वहां उनकी मुलाकात यूरोप के बड़े बड़े गणितज्ञों और विचारकों से हुई।
वहीं पे कैलकुलस वाला काम भी हुआ।
हाँ, वहीं उन्होंने न्यूटन से बिल्कुल अलग स्वतंत्र रूप से कैलकुलस का अपना वर्जन डेवलप किया। ये दिखाता है कि वो सेल्फ लर्निंग और वो जो बचपन में लाइब्रेरी मिली थी उसका कितना असर था।
तो मतलब अकादमिक दुनिया ने एक तरह से दरवाजा बंद किया, तो उन्होंने अपना राह बना ली।
हाँ,
और फिर प्रोफेसर नहीं बने वो।
उन्होंने लगभग 40 साल हनोवर राजघराने की सेवा में बिताए, डिप्लोमैट, इतिहासकार, लाइब्रेरियन, सलाहकार, कई भूमिकाओं में।
ओ, तो दरबारी जीवन।
हाँ, इससे उनको आर्थिक सुरक्षा मिली, प्रभाव भी मिला, लेकिन ये भी सच है कि इन दरबारी कामों में वो इतने उलझे रहते थे कि कई बार उनके अपने जो दार्शनिक या वैज्ञानिक काम थे वो पीछे छूट जाते थे।
हाँ, ये तो होता है अक्सर।
पर वो ज्ञान के आदान प्रदान में बहुत विश्वास रखते थे। पूरे यूरोप में चिट्ठी पत्री चलती थी उनकी बड़े बड़े विद्वानों से, और इसी वजह से उन्होंने 1700 में बर्लिन अकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना में भी मदद की।
ये दिलचस्प है कि वो दरबारी काम और अपने बौद्धिक शौक दोनों साथ चला रहे थे। वो इतिहास लिखने वाला किस्सा क्या है हनोवर परिवार का?
हाँ, वो मजेदार है। उन्हें हनोवर राजवंश का इतिहास लिखने का काम मिला था। करीब 30 साल उस पर लगे रहे, पर कभी पूरा नहीं किया।
30 साल?
हाँ, कहते हैं कि वो इस काम को बहाना बनाकर यूरोप में घूमते रहते थे, अपने दूसरे गणितीय और दार्शनिक काम करते रहते थे।
कमाल है, मतलब वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, दुनियादारी में भी माहिर थे।
बिल्कुल, वो प्रैक्टिकल चीजों में भी बहुत आगे थे। उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन किया था, पास्कल की मशीन से भी बेहतर। वो गुणा भाग भी कर सकता था।
अच्छा, कैलकुलेटर भी।
हाँ, ये दिखाता है कि उनका दिमाग कैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में चलता था।
चलिए अब उनके बड़े आइडियाज पर आते हैं। सबसे ज्यादा जिक्र होता है उनके मेटाफिजिक्स का, और उसमें भी मोनाड का सिद्धांत। ये क्या चीज है?
हाँ, ये लाइबनीज के दर्शन का शायद सबसे अनोखा और थोड़ा मुश्किल हिस्सा भी है। देखिए, उनका कहना था कि ये जो ब्रह्मांड है, इसकी सबसे बुनियादी चीज, सबसे छोटी इकाई, वो कोई भौतिक कण या एटम नहीं है।
तो फिर क्या है?
वो है असंख्य, सरल, अविभाज्य, गैर भौतिक चीजें, जिन्हें वो मोनाड्स कहते थे। आप इन्हें चेतना या ऊर्जा के छोटे छोटे बिंदु जैसा समझ सकती हैं, आत्मा जैसे।
गैर भौतिक मतलब फिजिकल नहीं।
बिल्कुल, और हर मोनाड अपने आप में पूरा है, एक तरह का जीवित दर्पण जो अपने अकेले के नजरिए से पूरे ब्रह्मांड को रिफ्लेक्ट करता है।
अगर ये मोनाड एक दूसरे से सीधे इंटरैक्ट नहीं करते, आपने कहा गैर भौतिक हैं, तो फिर ये दुनिया हमें इतनी जुड़ी हुई, इतनी व्यवस्थित क्यों लगती है? चीजें एक दूसरे पर असर डालती हुई कैसे दिखती हैं?
बहुत सही सवाल। यहीं पर लाइबनिस का दूसरा बड़ा आइडिया आता है, पूर्व स्थापित सामंजस्य या प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी।
प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी मतलब पहले से तय तालमेल।
हाँ, उनका कहना था कि ईश्वर ने जब दुनिया बनाई, उसी समय सारे मोनाड को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया या सिंक कर दिया कि उनके सारे काम, सारी अवस्थाएं बिल्कुल परफेक्ट तालमेल में हो अपने आप।
जैसे दो घड़ियां हों जिन्हें एक साथ बिल्कुल सही टाइम पे सेट कर दिया गया हो।
एकदम सही उदाहरण। वो दोनों अलग अलग चल रही हैं, पर टाइम हमेशा एक जैसा दिखाएंगी। ऐसा लगेगा कि एक दूसरे को देखकर चल रही हैं, पर असल में नहीं।
तो मन और शरीर वाला जो डेकार्टेस का प्रॉब्लम था कि वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, लाइबनिस का जवाब था कि वो करते ही नहीं, बस सिंक्रोनाइज्ड हैं।
बिल्कुल, ये डेकार्ट्स के ड्यूलिज्म का एक बहुत ही अनोखा हल था। तो लाइबनिस के हिसाब से असलियत मूल रूप से मानसिक या आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं, और हर छोटे से छोटे हिस्से में पूरा ब्रह्मांड झलकता है, एक अद्भुत पहले से तय ऑर्केस्ट्रा की तरह।
ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है, सोचने पे मजबूर करता है। उनका एक और सिद्धांत बहुत मशहूर है, पर्याप्त कारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब बहुत सीधा सा है पर गहरा है, कि दुनिया में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हर चीज जो मौजूद है या हर बात जो सच है, उसके होने का या सच होने का कोई ना कोई पर्याप्त कारण जरूर होता है,
चाहे हमें पता हो या ना हो।
हाँ, अगर कोई चीज है तो सवाल पूछा जा सकता है कि ये क्यों है, और उसका कोई ना कोई जवाब, कोई कारण जरूर होगा। ये उनके पूरे रैशनलिस्ट नजरिए का आधार है, कि दुनिया तर्कसंगत है, समझी जा सकती है।
और इसी से जुड़ा है उनका वो आइडिया जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई और मजाक भी उड़ा, ये सभी संभव संसारों में सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। ये कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं लगता, दुनिया में इतनी बुराई, इतना दुख देखकर।
हाँ, ये बहुत मिसअंडरस्टूड आइडिया है। वॉल्टेयर ने तो कैंडिड में पैंगलॉस के कैरेक्टर से इसका खूब मजाक उड़वाया।
हाँ
हाँ, लेकिन लाइबनिट्स का मतलब ये नहीं था कि इस दुनिया में कोई कमी या दुख है ही नहीं। उनका तर्क ज्यादा मेटाफिजिकल था। वो कह रहे थे कि ईश्वर, जो कि पूरी तरह बुद्धिमान और अच्छा है, उसने जब दुनिया बनाने का सोचा तो उसके सामने बहुत सारे संभव संसार थे।
अच्छा,
तो ईश्वर ने उन सभी संभव संसारों में से उसी तो चुना और बनाया जिसमें नियमों की सादगी और घटनाओं की समृद्धि का सबसे अच्छा बैलेंस हो। मतलब कोई दूसरी दुनिया होती तो या तो वो कम इंटरेस्टिंग होती, या फिर उसके नियम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बेकार होते।
तो मतलब इस दुनिया में जो बुराई या दुख है, वो इसलिए नहीं कि ईश्वर बुरा है, बल्कि इसलिए कि अच्छाई, स्वतंत्रता और व्यवस्था का ये वाला खास बैलेंस बनाने के लिए ये जरूरी था, एक तरह से जरूरी बुराई।
हाँ, कुछ ऐसा ही। ये एक थियोडिसी है, ईश्वर के न्याय को समझाने की कोशिश। बुराई शायद किसी बड़े अच्छे के लिए जरूरी है, या फिर वो बस अच्छाई की कमी है। ये कोई भोलापन नहीं, बल्कि एक गहरा तर्क है कि ये पूरी कायनात की बनावट तर्कसंगत और अंततः अच्छी है।
और इसी से जुड़ा उनका वो मशहूर सवाल भी है, Why is there something rather than nothing?
बिल्कुल, उनके लिए इसका जवाब आखिरकार ईश्वर में था। ईश्वर ही वो पर्याप्त कारण है जिसके होने से कुछ है शून्य नहीं।
इन दार्शनिक विचारों के साथ साथ गणित में भी उनका काम जबरदस्त था। कैलकुलस की बात तो हुई।
हाँ, कैलकुलस तो था ही, और उनका डीवाई डीएक्स वाला नोटेशन आज भी ज्यादा चलता है न्यूटन वाले से।
जी,
लेकिन गणित में उनका एक और बड़ा क्रांतिकारी काम था, बाइनरी अरिथमेटिक।
बाइनरी? जीरो और वन वाला?
जी हाँ, वही बाइनरी सिस्टम जो आज सारे कंप्यूटर्स का आधार है। उन्होंने न सिर्फ ये सिस्टम बनाया बल्कि ये भी सोचा कि इससे लॉजिकल कैलकुलेशन हो सकती है।
कमाल है, उस जमाने में।
हाँ, और उन्हें चीन के प्राचीन ग्रंथ आई चिंग में भी रुचि थी। उसके हेक्साग्राम्स में उन्हें अपने बाइनरी सिस्टम जैसी चीज दिखी थी।
अच्छा, चीन से भी कनेक्शन?
हाँ, वो हमेशा अलग अलग ज्ञान की चीजों में कनेक्शन ढूंढते थे। उनका एक सपना था एक यूनिवर्सल लॉजिकल भाषा बनाने का, कैरेक्टरिस्टिका यूनिवर्सालिस, जिससे सारे दार्शनिक झगड़े ही खत्म हो जाए।
वाह, क्या सोच थी। बाइनरी कोड, कैलकुलस, मोनैड, बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड, एक ही दिमाग से, गजब। पर इतने मौलिक विचारों के बाद भी उन्हें शुरू में वैसी पहचान क्यों नहीं मिली जैसे न्यूटन या डिकार्टेस को?
हाँ, इसके कई कारण थे। एक तो वो कैलकुलस वाला झगड़ा, उसने इंग्लैंड में उनकी इमेज बहुत खराब की।
हाँ, वो तो था।
दूसरा, उनके कई जरूरी फिलोसॉफिकल लेख उनके जीते जी छपे ही नहीं, जैसे न्यू एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। वो जॉन लॉक के एम्पिरिसिज्म का जवाब था जिसमें वो इनेट आइडियाज की बात करते हैं। वो उनकी मौत के लगभग 50 साल बाद छपा।
ओह, तो लोगों तक पहुंचे ही नहीं विचार?
काफी देर से पहुंचे। उनके जीवन में सिर्फ थियोडेसी ही बड़ी फिलॉसफी की किताब के तौर पर छपी थी। बाद में क्रिश्चियन वॉल्फ जैसे लोगों ने उनके विचारों को फैलाया। और फिर कांट का दर्शन भी तो एक तरह से लाइबनिस के रैशनलिज्म से ही डायलॉग करते हुए बना।
और वोल्टेयर का वो व्यंग्य, उसने भी नुकसान किया होगा।
हाँ, कैनबीड ने बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड को लगभग मजाक बना दिया, हालांकि 20वीं सदी में बर्टन रसल जैसे लोगों ने उनके काम की गहराई को पहचाना। आज तो उनकी प्रासंगिकता बहुत सारे एरिया में है, कंप्यूटर साइंस तो है ही।
हाँ, बाइनरी की वजह से।
हाँ, लॉजिक में पॉसिबल वर्ल्ड सिमेंटिक्स का आइडिया उन्हीं से आया। मेटाफिजिक्स में सब्सटेंस और प्रॉपर्टीज पर जो बहसें होती हैं उनमें उनके विचार आज भी जिंदा हैं। यहाँ तक कि AI और चेतना पर जो चर्चाएं हैं उनमें भी लाइबनिस के आइडियाज गूंजते हैं।
उनके कुछ और कथन भी बड़े मशहूर हैं, जैसे वो कहते थे, प्रकृति कोई छलांग नहीं लगाती, नाथुरा नॉन फाशित साल्टस।
हाँ, ये उनका निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि प्रकृति में सब कुछ धीरे धीरे क्रमिक रूप से बदलता है, कोई अचानक बड़े गैप या जंप नहीं होते, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक चेन में। ये विचार बायोलॉजी और फिलॉसफी दोनों में अहम रहा है।
इन सब महान बातों के बावजूद आलोचनाएं भी तो थीं, कैलकुलस विवाद और वोल्टेयर के अलावा।
हाँ, दार्शनिक लेवल पर भी कुछ लोगों को उनका ये मोनाइड और प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी वाला सिस्टम बहुत ज्यादा काल्पनिक, कॉम्प्लेक्स और जिसे साबित न किया जा सके वैसा लगता है, मतलब हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत दूर।
और धर्म के नजरिए से?
वहां भी दोनों तरफ से कुछ को लगा कि उनका जरूरत से ज्यादा तर्क पर जोर देना आस्था को कमजोर करता है, दूसरी तरफ कुछ ने थियोडिसी की आलोचना की कि ये दुनिया के दुखों को देखते हुए ईश्वर को कुछ ज्यादा ही दूर और उदासीन बना देता है।
और आज के जमाने में?
आज भी नेचुरलिस्ट फिलोसोफर्स उनके नॉन फिजिकल मोनैड को नहीं मानते। बर्ट्रंड रसल ने भी आलोचना की थी कि उनका लॉजिक उनकी मेटाफिजिकल मान्यताओं से प्रभावित था।
उनकी सोच जितनी गहरी थी उनका जीवन भी उतना ही दिलचस्प था, जैसे ये कि उन्होंने कभी शादी नहीं की।
हाँ, कई महत्वपूर्ण महिलाओं से उनकी गहरी दोस्ती थी, जैसे प्रशिया की रानी सोफी शार्लट, लेकिन शादी नहीं की, शायद काम में इतने डूबे थे।
और वो कूटनीति वाला किस्सा, मिस्र पर हमले का सुझाव?
हाँ, उन्होंने फ्रांस के राजा लुई 14वें को सुझाव दिया था कि तुर्कों से लड़ने के बजाय मिस्र पर हमला करो ताकि फ्रांस का ध्यान यूरोप से हटे। ये नेपोलियन से बहुत पहले की बात है।
कमाल है, लेकिन अंत उनका थोड़ा दुखद रहा है ना, उपेक्षा में।
हाँ, ये दुख की बात है। उनके जो सबसे बड़े संरक्षक थे हनोवर के इलेक्टर जॉर्ज लुईस, वो बाद में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम बने, लेकिन उन्होंने लाइबनिस को लंदन आने से मना कर दिया।
क्यों?
कैलकुलस विवाद की वजह से
शायद।
इंग्लैंड में वो लोकप्रिय नहीं थे, तो 1716 में जब हनोवर में उनकी मौत हुई तो कहते हैं उनके अंतिम संस्कार में बस उनका सेक्रेटरी ही गया था। इतनी बड़ी प्रतिभा का ऐसा अंत।
लेकिन उन्होंने जो काम छोड़ा है, 2 लाख पन्नों से ज्यादा के नोट्स।
हाँ, अविश्वसनीय। दर्शन, गणित, कानून, जियोलॉजी, इतिहास, राजनीति, शायद ही कुछ बचा हो, उनके सारे काम को पब्लिश करने का प्रोजेक्ट 1901 में शुरू हुआ था और कहते हैं 21वीं सदी के मध्य तक चलेगा।
सोचिए कितना लिखा होगा।
यही उनके ज्ञान की विशालता दिखाता है।
तो अगर हम लाइबनिस को समेटें तो वो एक ऐसी असाधारण प्रतिभा थे जिन्होंने ज्ञान के लगभग हर कोने को छुआ। एक महान सिंथेसाइजर थे, आस्था और तर्क, विज्ञान और दर्शन, अलग अलग देशों और विचारों को जोड़ने की कोशिश की। मोनार्ड्स, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी, कैलकुलस, बाइनरी कोड, पर्याप्त कारण, बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड, ये कुछ बड़े आइडियाज हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, और उनका महत्व शायद किसी एक सिद्धांत से ज्यादा उस नजरिए में है, उस विजन में है कि ये दुनिया मौलिक रूप से तर्कसंगत है, सुसंगत है, सामंजस्यपूर्ण है और अंततः अच्छी है। उन्होंने सिस्टमैटिक सोच और ज्ञान को जोड़ने का जो तरीका अपनाया वो आज भी प्रेरणा देता है। कंप्यूटर साइंस से लेकर लॉजिक और फिलॉसफी तक उनके बीज आज भी फल दे रहे हैं। वो एनलाइटनमेंट के उस आदर्श का प्रतीक है कि तर्क हमें दुनिया समझा सकता है और ये समझ एक सार्थक दुनिया दिखाती है। ये एक बहुत पावरफुल विजन है, लेकिन हाँ, जैसा आलोचकों ने कहा, थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है अगर ये दुनिया की असलियत को नज़रअंदाज कर दे।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। लाइबनिस का जो ये प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी वाला विचार है कि सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार एक परफेक्ट तालमेल में हो रहा है, अगर इसे सच माने तो ये आज की दुनिया में हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में हमारी सोच पर क्या असर डालेगा? क्या हमारे फैसले वाकई हमारे हैं या हम सब एक पहले से लिखे गए संगीत का हिस्सा भर हैं? सोचेगा जरूर।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।